सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् कम्मट्ठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिं वेयणमहाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। दसवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार अपनी चल रही है और हम पृष्ठ संख्या 74 पर आ गए हैं। थोड़ा हम देखते कि विषय क्या चल रहा है, पहले से थोड़ा उसका रेफरेंस समझिए ना, आपको क्या बात चल रही है, तो वो हम शुरू से थोड़ा देखते हैं। इस पुस्तक में कौन सी बात चल रही है, उसकी बात चलती है। देखो, हमने सूत्र क्रमांक नहीं, उसके बाद हमने कुछ, ये कौन से जीव की बात चल रही है, उसकी बात चलेगी। हाँ, 31 पृष्ठ पर लिखा था कि ज्ञानावरणीय की वेदना ने उसका कर्म जो इकट्ठा किया है, ज्ञानावरण कर्म, तो अधिक से अधिक किसको होता है। सूत्र नंबर 6 में हमने देखा था, हर एक सूत्र में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये 7वें सूत्र से उसका वर्णन शुरू किया कि जो जीव बादर पृथ्वी का एक जीव में कुछ अधिक 2000 सागरोपम से कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा हो, यहां से शुरू किया उन्होंने। फिर उसके बाद 8वें सूत्र में लिखा, वहां परिभ्रमण करने वाले जीव के पर्याप्त भव बहुत और अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं। ऐसे ही जीव ले कि जहां कर्म का ग्रहण ज्यादा में ज्यादा होगा। फिर उसके आगे देखते हैं 37 पेज पर कि पर्याप्त काल दीर्घ और अपर्याप्त काल थोड़े होते हैं। उसके बाद हमने देखा 10वें सूत्र में कि वहां जब जब आयु को बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है। आयु बंध अन्यत्र तो अधिक से अधिक योग लिया और आयु बंध के काल में जघन्य योग लिया, क्योंकि आयु बंध के काल में यदि अधिक से अधिक योग ले लेंगे तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन आठों कर्मों में होगा। अधिक द्रव्य लिया तो अधिक आठों कर्मों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ज्ञानावरण में कम आएगा, इसलिए कम योग से आयु बांधी है, ऐसा जीव लिया। फिर 11वें सूत्र में हमने देखा था उपरिम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है। अब इसकी बात तो अभी यहाँ नहीं समझेंगे, हमने बहुत उसमें डिटेल में समझा था, उसके आगे देखते हैं। हाँ देखो, ये नहीं, जो कर्म की खिरना चलता है ना, उसमें उत्कृष्ट पद जघन्य पद, उसकी रचना कैसी होती है कर्मों की, उसकी वहां बात आई थी। 45 पृष्ठ पर देखा था, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। देखो, जो कर्मों का ग्रहण होता है, जिसको नंबर ऑफ परमाणु कहते हैं, संख्या कितनी प्रदेशों की ग्रहण करता है, तो जितना योग अधिक उतने कर्म परमाणु को अधिक ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त करता है। हम पहले वाले सूत्रों की फिर रिवीजन देख रहे हैं। 13 नंबर में देखा था कि बहुत बहुत बार बहुत संक्लेश रूप परिणाम वाला होता है, जहाँ संक्लेश परिणाम है वहाँ इन वो उसका उत्कर्षण वगैरह होता है, उसकी अपेक्षा से संक्लेश परिणाम को प्राप्त होता है, देखा था। इस तरह से बादर पृथ्वी कायकों में ये जो बताई बात, इसके बाद इस प्रकार परिभ्रमण करके बादर त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। त्रस पर्याप्तों में वो आया है, क्योंकि अधिक से अधिक योग तो त्रस पर्याप्तों में ही होने वाला है, फिर भी बादर पृथ्वी कायकों में इसे इस तरह से भ्रमण करके आया हुआ जीव लिया। उसके पश्चात हम देखते हैं 50 पृष्ठ पर, वहां परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के पर्याप्त भव बहुत होते हैं और अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं, क्योंकि योग जो है वो पर्याप्तों में ज्यादा होता है, अपर्याप्त जीवों में कम होता है। जहां अधिक योग है वहां अधिक परमाणु ग्रहण करेगा। उसके बाद कहते हैं पर्याप्त काल दीर्घ होता है और अपर्याप्त काल थोड़ा होता है। और 17 नंबर के सूत्र में बताया, जब जब आयु को बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है। कारण तो वही है, आयु बंधने के समय जघन्य योग से बांधता है, क्योंकि उसका 8 में विभाजन होगा, तो ज्यादा परमाणु लेंगे के तो इसके खाते में कम आएगा, इसलिए कम योग से बांधता है तो कम लेता है, तो वो डिफरेंस कम रहता है उसका। 18 नंबर के सूत्र में 51 पेज पर देखा था, ऊपरी स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है और नीचे के स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है। इसमें भी हमने उत्कर्षण अपकर्षण की अपेक्षा और जो निषेक रचना होती है उसकी अपेक्षा देखा था, उत्कर्षण होकर ऊपर चले जाते हैं परमाणु, तो उसको कहते हैं ऊपर की स्थिति, यानी ऊपर के निषेक। कर्म बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते हैं, तो यहाँ ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर अधिक स्थिति हो जाती है, तो सत्ता में पड़े हुए कर्म परमाणु बढ़ेंगे, इसलिए ऊपर की स्थितियों में रहता है, ऐसा कहा हम, उत्कृष्ट पद होता है। 19 सूत्र में देखा था, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं बहुत बहुत बार बहुत संक्लेश परिणाम वाला होता है। 52 पृष्ठ पर देखा हमने 21वें सूत्र में, इस प्रकार परिभ्रमण करके अंतिम भव ग्रहण में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। सातवीं पृथ्वी में गया, इतना सारा 2000 सागर वाला त्रस पर्याप्त भव बहुत करके लास्ट में सातवीं पृथ्वी में गया। अभी वो अंतिम भव नहीं है त्रस का, क्योंकि वहां से एक इंद्रियों में जाने वाला नहीं है, वहां से निकलेगा, परंतु अभी वो सातवें नरक का नारकी वहां उत्पन्न हुआ। उसके बाद देखा हमने 22 नंबर का सूत्र 54 पृष्ठ पर कि प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर उसने उत्कृष्ट योग के द्वारा कर्म पुद्गल को ग्रहण किया। पहले ही समय में वो शरीर धारण किया, यानी रुजुगति से आया, तो वहां भी उसका उपपाद योग जो है वो अधिक से अधिक था। 23 नंबर में कहते उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट वृद्धि क्या होती है? तीन प्रकार के योग पाए जाते हैं। एक तो है उपपाद योग, जो शरीर ग्रहण के पहले समय में होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस वृद्धि होती है जिसको एकांत वृद्धि कहते हैं। शरीर पर्याप्ति पूरे होने के समय एक समय पहले तक एकांत वृद्धि रूप या एकांत अनुवृद्धि रूप योगस्थान होते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, और उसके बाद परिणाम योग स्थान होते हैं आयु के अंत तक। उसमें कभी उतने ही रहते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, उसको कहते हैं परिणाम योग स्थान। तो यहाँ कहते हैं ये जो वृद्धि है उसकी भी जो स्पीड है, बहुत वृद्धि को कोई प्राप्त होगा, कोई थोड़ी कम वृद्धि को प्राप्त होगा, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट जो है तो उत्कृष्ट वृद्धि से वो वृद्धि को प्राप्त हुआ। फिर 24वें सूत्र में कहा था, अंतर्मूर्त द्वारा अति शीघ्र सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। 6 पर्याप्ति वहां भी है ना, संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उनके 6 पर्याप्ति होती है, याद है कौन कौन सी होती है पर्याप्ति? हाँ अश्विन भाई, हाँ पहली कौन सी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये विषय लिया था अभी वहाँ अमेरिका में, पर्याप्ति वाला। तो ये शीघ्र पर्याप्तियों से पूरा है ना, वो परिणाम योगस्थान उसके जल्दी शुरू हुए ना, इसलिए यहाँ कहा, क्योंकि परिणाम योगस्थान में योग बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, और तो इसलिए कहा। 25वें सूत्र में कहते हैं वहां भवस्थिति 33 सागरोपम प्रमाण है। ये सातवें नरक वाला भी 33 सागरोपम पूर्ण आयु वाला जीव लिया। अब 26वां सूत्र है 56 पृष्ठ पर, आयु का उपयोग करता हुआ बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा ही जीव लेना है कि जो अधिक से अधिक कर्म ग्रहण करेगा, इसलिए उत्कृष्ट योग स्थान। योग स्थान किसको कहना? तो जो योग है, योग की शक्ति, किसी के कम है किसी के बहुत है, तो ये जो उसके वेरिएशन है उसको हम स्थान कहते हैं अलग अलग। 27वें सूत्र में कहते हैं बहुत बहुत बार बहुत संकलेश परिणाम वाला होता है। उसके बाद 28वें सूत्र में कहते हैं 57 पृष्ठ पर, इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा। ये जो योग यव मध्य शब्द आया उस पर इतने सब अभी कितने पेजों से उस पर चर्चा चल रही है कि योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त स्थित रहा। तो योग यव मध्य ने क्या, योग नाम, ये यव नाम का अनाज है ना, जैसे अपना गेहूं है बीच में मोटा है और दोनों हाँ कम होता है, तो उसको कहते हैं योग यव मध्य, यव कहते उसको, जैसे यव ऐसा जो है, इस तरह से उसका आकार बताया। तो इसमें ये योग, योग के बारे में यव मध्य कैसे समझना? तो अभी हमने तीन प्रकार के जो योग देखे थे, उपपाद योग, एकांत अनुवृद्धि वाले और परिणाम योग। तो परिणाम योग में देखो, उपपाद में तो एक ही समय रहता है, एकांत वृद्धि तो एक समय में एक ही योग होगा, दूसरे समय में बढ़ेगा, यानी कोई एक समय या दो समय तीन समय तक वही योग चालू रहे ऐसे कभी नहीं बनेगा। तो दो समय तक वही योग रहे या तीन समय तक रहे, ये कहाँ हो सकता है? तो परिणाम योग स्थानों में हो सकता है। इसलिए ऐसे कोई जीव के दो समय तक लगातार वही योग है, कोई है तीन समय तक वही है, चार समय तक वही है, ऐसे आठ समय तक भी उतना ही योग है, ऐसे भी जीव पाए जाएंगे। तो ये काल जो आठ समय है उसकी अपेक्षा इसको ज्यादा से ज्यादा काल आठ समय का है, कुछ जीव है ज्यादा से ज्यादा काल वो सात समय का है, कोई है छह समय का, इस तरह से ये उसके अगर हम ऐसी रचना करेंगे तो उसको कहते काल की अपेक्षा यव मध्य रचना। ये आठ समय वाले जीव, ये सात समय वाले दोनों ओर, फिर छह समय वाले, पांच समय वाले, चार समय वाले, नीचे तो चार ही समय तक हम ले लेंगे और ऊपर की ओर हम तीन समय वाले, दो समय वाले भी हो गए। तो वहां जीवों की संख्या असंख्यात गुणी है, काल ज्यादा है और जीव यहाँ कम है। इस तरह से हमने काल की अपेक्षा देखे थे। अब दूसरे एक यव मध्य रचना आती है, उसमें जो योग स्थान है त्रस पर्याप्त जीवों के योग स्थान लेना, उसमें जघन यानी कम से कम योग वाले कोई जीव है, थोड़ा ज्यादा योग वाले, और ज्यादा योग वाले, और ज्यादा योग वाले, इस तरह से संगी पंचेंद्रिय का जो उत्कृष्ट योग है, एक एक संगी पंचेंद्रिय में भी जो रेंज तो बहुत बड़ी होगी उसकी, परंतु उसमें भी जो अधिक से अधिक है, और द्विंद्रिय पर्याप्त में कम से कम है, ये सब योग स्थान हम एक साथ लिखेंगे एक के बाद एक। तो उसमें ऐसा कोई योग स्थान है बीच वाला जिसमें जीवों की संख्या मैक्सिमम है और दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती है, तो इस योग स्थान को यहाँ के जीवों की नंबर हमने मान लिए थे 128 है, ये समझने के लिए हमने माना था। तो दोनों ओर वो संख्या घटती जाती है, तो घटती जाती है तो ये पहले पहले 16 16 से घटेगी, 112 होगी, 96 होगी, 80 होगी, 64 होगी, दोनों ओर घटती जाएगी। तो 128 की 64 होती है तो आधी हो गई, फिर 32 हो गई तो उसके आधी हो गई, और 16 हो गई तो उससे आधी हो गई, तो हम उसको कहते गुणहानि हुई, गुणित प्रमाण में हानि हुई ना। तो ये गुणहानि दोनों ओर ऐसे बता सकते हम, तो इसको कहेंगे ये जीव की अपेक्षा, जीवों की संख्या की अपेक्षा ये यवमध्य रचना है। तो अभी आचार्य इतना ये बात समझाना चाहते हैं कि इन दोनों में से इस सूत्र में कौन से यवमध्य को लेना है, काल यवमध्य को लेना है कि जीव यवमध्य को लेना है। तो इसके लिए इतनी सारी चर्चा चली है। तो ये यवमध्य कैसे है, उसकी गुणहानि कैसे निकालना, उसके लिए अलग अलग प्रकार के भागार हमने कल देखे थे बहुत विस्तार में। तो अब उसके आगे हम बढ़ेंगे, उसमें भी हमने कल ये भागारों की बात देखी थी, और ये जो श्रेणी कहा था अभी उसके आगे का हम विषय ले लेंगे। 61 पेज पर हमने देखा था, 61 पेज पर चौथी लाइन में वहां देखी थी प्ररूपणा, ये किसके बारे में, ये जो हमने जीव यवम मध्य रचना देखी है तो उसमें प्ररूपणा क्या कर रहे हैं कि ये जगन्य योग स्थान है उसमें जीव है, दूसरे नंबर के योग स्थान में जीव है, तीसरे इस नंबर के योग स्थान में जीव है, इतनी ही कह दिया, इसी को कहते प्ररूपणा। फिर प्रत्येक योग स्थान में कितने कितने जीव है इसकी संख्या निकालेंगे तो उसको कहते हैं प्रमाण। वो कैसा निकालना उसकी बहुत विस्तार से बात की थी हमने, वो काल्पनिक संख्या लेकर भी उसको समझा था। वो होते तो है जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रत्येक योग स्थान में, और सब मिलकर भी उतने ही होते हैं, फिर भी हरेक की संख्या ऐसे अलग अलग है उसको हमने देखा था। और हमने ये माना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 128 वाले जीव है बीच में, और जघन्य योग स्थान में 16 है ऐसे हम मान लिया था ना, और उत्कृष्ट योग स्थान तक भी हमने बढ़ते बढ़ते देखा था। अब उसके बारे में प्रमाण के बारे में कल जो श्रेणी की बात आई थी, श्रेणी यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये जो योग स्थान है, तो उसमें श्रेणी रूप से, श्रेणी यानी बढ़ते हुए रूप से और बाद में घटते हुए रूप से, ये जो उसका प्रमाण है उसको श्रेणी कहा था। तो वो उसमें दो प्रकार देखे थे हमने, अनंतर उपनिधा और परंपरा उपनिधा। अनंतर यानी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक एक योग स्थान में कितने जीव है उसको कैसे निकालना उसका गणित बताया था। और परंपरा उपनिधा यानी मिनिमम वो 16 है, फिर कुछ स्थान जाने के बाद 32 होते हैं, कुछ स्थान जाने के बाद 64 होते हैं, 128 होते हैं, फिर घटते चले जाते हैं। तो एक एक गुणहानि के प्रति इतना दुगुना दुगुना होता है, उसको परंपरा उपनिधा कहा था। ये तो श्रेणी की बात कल हो गई। अब अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व। अवहार यानी वो भागहार के भेद, वो भी हमने देखे थे। अब यहाँ जो बात आएगी, हम 74 पृष्ठ पर आ गए हैं, देखो यहाँ तीन अनुयोग द्वार हैं। ये किसकी बात चल रही थी, अपनी वो श्रेणी वाली बात चल रही थी ना, कल हमने श्रेणी के बात देखी थी बहुत विस्तार से, उसमें अनंतर उपनिधा और परंपरा उपनिधा वो दो बातें देखी थी। अब उसके आगे की बात उसी की कंटिन्यूएशन में चल रही है। यहाँ तीन अनुयोग द्वार है यानी इसके तीन अधिकार है, या तीन तरह से उसका कथन है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। प्ररूपणा यानी उसका कथन करना, प्रमाण जो कुछ है उसको बताना, और अल्पबहुत्व ने कौन सी छोटी बात है कौन से बड़ा है उसको कहेंगे, उसको कहते हैं अल्पबहुत्व। प्ररूपणा सुगम है, ये कथन कर दिया वही प्ररूपणा है। अब प्रमाण बताते हैं, ये प्रमाण किसकी बात चल रही है, जो परंपरा अनुपनिधा है ना, हाँ उपनिधा, उसके उसमें ये प्रमाण की बात चल रही है, क्योंकि जो अनंतर उपनिधा है उसमें एक एक योग स्थान में कितना कितना है उसने हमने उसका प्रमाण देखा था। अब परंपरा उपनिधा में जो प्रमाण है एक गुणहानि के बाद दूसरी, या कितनी गुणहानि है टोटल, जिसको हम नाना गुणहानि कहते हैं, तो ये जो हमने मैक्सिमम देखे थे अपनी संख्या में जो 128 वाले बीच वाली गुनाहनी, तो नीचे 3 गुनाहनी है और ऊपर 5 गुनाहनी है ऐसे हमने मान लिया था। तो इन टोटल गुनाहनी कितनी है, नीचे से ऊपर कितनी ज़्यादा है और उससे वो क्या प्रमाण है, उसको कहेंगे प्रमाण। तो ये वही प्रमाण बता रहे हैं। नाना गुनाहनी शलाका है, पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र है। अपने गणित में हमने मान लिया था नीचे 3 है और ऊपर 5 है, तो टोटल 8 गुनहानी है, उसको नाना गुनहानी कहते हैं। और एक्चुअल में कितनी है, रियलिटी में कितनी है, तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण, इतनी गुनहानी है। और एक गुनहानी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र है। एक गुनहानी नहीं, उसमें एक गुनहानी में योग स्थान कितने हैं, हमने देखा था, हमने तो 4 ही मान लिए थे, 4 योग स्थानों की एक गुनहानी हमने कही थी। ऐसे 3 गुनहानी नीचे और 5 गुनहानी ऊपर, ऐसे हमने मान लिया। नीचे ने द्विंद्रिय की तरफ, जघन्य की तरफ, और ऊपर ने उत्कृष्ट की तरफ। तो अब यहाँ कहते हैं कि यहाँ गुनहानी कितनी है, एक एक गुनहानी, तो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग जिसको हमने 4 माना था अपने गणित में, क्योंकि नाना गुनहानी शलाकाओं से योग स्थान अध्वान के भाजित करने पर जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है। देखो हमने माने थे कि ऐसे योग स्थान कितने मान लिए थे हमने, 32, और नाना गुनहानी कितनी थी, तो 8, नीचे 3 और ऊपर 5 हमने देखी थी। तो 32 को हम 8 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 योग स्थानों का एक एक गुनहानी होगी, 4 योग स्थानों की। यहाँ क्या शब्द आया था इसको फिर पढ़ते हैं। नाना गुनहानी शलाकाओं से, यानी अपनी गणित में 8 से योग स्थान अध्वान, अध्वान यानी काल। अब यहाँ कोई काल की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ योग स्थानों को यहाँ काल कहा है, जिसको हम स्थिति भी कहते हैं अपने गणितों में, निषेकों के भाषा में उसको यहाँ काल कहा। तो योग स्थानों की संख्या को यहाँ योग स्थान अध्वान कहा। उसको भाजित करने पर, यानी 32 को भाजित करने पर जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग प्रमाण प्राप्त होता है, जो हमने अपने काल्पना में 4 ले लिया था। अब अल्प बहुत्व, यानी कौन सी गुनहानी ज्यादा है कौन सी अधिक है, ये तो आसान है ना, हमें पता है, नीचे हमने 3 देखी ऊपर 5 देखी। तो कहते यव मध्य से नीचे की नाना गुनहानी शलाका है सबसे थोड़ी है, सबसे थोड़ी है फिर भी असंख्यात है हो। उनसे उपरिम नाना गुनहानी शलाकाएं विशेष अधिक है। नीचे 3 है और ऊपर 5 है, तो विशेष अधिक है। तो विशेष अधिक यानी कितनी अधिक है, तो कहते हैं पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण अधिक है, वो अधिक का प्रमाण भी पल्ल्य के असंख्यातवे भाग है। उनसे सब नाना गुनहानी शलाकाएं विशेष अधिक है, तो कितनी अधिक है, विशेष कितनी अधिक है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, नीचे की 3 है और ऊपर की अधिक है, तो कितने से अधिक है, तो 2 से अधिक है, बराबर। अब कहते टोटल कितने हैं, सब नाना गुणानी शलाकाएं कितनी है, हाँ तो 8 है, तो ऊपर की 5 हुई थी, विशेष अधिक थी ना, विशेष अधिक है ने, नीचे के 3 थी, ऊपर 2 से अधिक, तो 3 में 2 मिलाए 5 हुए थे। अब कहते सब कितने हैं, तो नीचे की उसमें मिला दो फिर, तो 5 में 3 और मिला दो तो 8 हो जाएंगे, यही यहाँ कहना चाहते हैं। और एक गुणहानी का अध्वान असंख्यात गुणा है, एक गुणहानी का प्रमाण अध्वान ने काल असंख्यात गुणा है। इस प्रकार ये समझ में है, हाँ देखो देखो क्या कहते, देखो मैं फिर कहती हूँ। अब हमने क्या देखा था, नाना गुनहानी टोटल कितनी हमने देखी थी, अभी अपनी अपनी बात भूल जाओ, पल्ले के असंख्यात विभाग। और एक गुनहानी का काल कितना देखा था, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, देखो देखो इसको डिराइव करेंगे, जगत श्रेणी यानी सात राज्यों वाला, तो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग बड़ा है कि पल्य का असंख्यात भाग बड़ा है? हाँ, क्योंकि पल्य कहाँ आता है मालूम है ना, हमने जो द्विरूप वर्ग धारा देखी थी, द्विरूप वर्ग धारा यानी वो वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग करते 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 पल्य आया, पल्ले के बाद असंख्यात बार वर्ग करते 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 अंगुल आया और आयु अंगुल का घनांगुल करो, अब घनांगुल के आगे वर्ग 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 करते जाओ असंख्यात बार, तब जाके जगत श्रेणी आएगी और जगत श्रेणी का घन करेंगे तो लोक आएगा, वो घनाघन धारा में चला जाएगा। तो ये जगत श्रेणी कितनी बहुत बड़ी है ना पल्ले से, तो ये पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण नाना गुणहानि शला का है और एक गुणहानि कितनी है जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, हमने चार मान लिया और वहां नाना गुणहानि आठ होती है, पर ये काल्पनिक फिगर्स है ना, उसको समझाएंगे कैसे, इतनी बड़ी फिगर्स लेंगे तो हमें समझने में कठिनाई होगी क्या है। तो एक्चुअल में कैसा है, तो नाना गुणहानि जो है वो है पल्ले के असंख्यात भाग, और देखो यहाँ आप लिख सकते हैं ना, अधस्तन गुणहानि शलाका का प्रमाण अधिक है, सब नाना गुणहानि शलाका है कितनी है टोटल, तो पल्ले का असंख्यात भाग, और एक गुणहानि का काल अध्वाने ने कितना असंख्यात गुणा है वो है जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, इसलिए असंख्यात गुणा सिद्ध होता है। अल्प बहुत्व कह रहे हैं ये कौन से कितना अधिक है, विशेष अधिक है, कितने गुना है, उसका प्रमाण बताएंगे यहाँ पर। इस प्रकार इस अविरुद्ध आचार्य वचन से जाना जाता है कि यवमध्य के जीव यवमध्य बराबर है, जीव यवमध्य के अधस्तन स्थान से उपरिम स्थान विशेष अधिक है। क्या कहना चाहते हैं, हमने देखे थे यवमध्य से नीचे के स्थान कितने हैं, एक गुणहानि में चार हमने देखे योग स्थान, और तीनों के मिलकर बारह योग स्थान नीचे हुए, और ऊपर योग स्थान कितने हैं, तो पांच चौक बीस हो जाएंगे, तो नीचे से ऊपर के थोड़े ही ज्यादा हैं। और काल यवमध्य में देखना, उसमें तो असंख्यात गुणा का कुछ डिफरेंस थे, काल यवमध्य की थोड़ी बात लेके देखते हम। देखो ये 58 पृष्ठ पर हम देखते हैं, अब ये तो हमने जीव एवं मध्य रचना देखी, अब काल एवं मध्य रचना में क्या देखेंगे कि जो 8 समय तक जो योग स्थान रहेंगे, जो 8 समय तक रहने वाले योग स्थान, उनकी संख्या कम है। देखो यहां पढ़ते हैं हम नीचे नीचे के पैराग्राम, यहाँ 8 समय प्रायोग्य योगस्थान थोड़े हैं, 8 समय तक लगातार रहने वाले ऐसे जो योगस्थान हैं उनकी संख्या कम है, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित 7 समय प्रायोग्य योगस्थान असंख्यात गुणे हैं, दोनों ही पार्श्व यानी दोनों ओर ये 7 समय वाले योगस्थान उनकी संख्या कम है। योगस्थान अभी यहाँ जीवों की संख्या नहीं, यहाँ योग स्थानों की संख्या चल रही है, 8 समय तक रहने वाले योग स्थान कम है और 7 समय वाले लगातार वो असंख्यात गुणे हैं, यहाँ काल कम है योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, ये थोड़ा ख्याल में लेना क्योंकि इस पॉइंट पर ही आगे का उनका सिद्ध होगा, जो कुछ करना है उनको सिद्ध। फिर कहते हैं दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित 6 समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुणे हैं और दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित 5 समय वाले जो है वो असंख्यात गुणे हैं और दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित 4 समय प्रायोग्य योग स्थान उससे भी असंख्यात गुणे हैं। अब ऊपर की ओर ले लेना, ऊपर तीन समय प्रायोग्य योगस्थान असंख्यात गुणे हैं और दो समय प्रायोग्य योगस्थान असंख्यात गुणे हैं, ये बात उन्होंने वहां बताई थी। तो इसको ही यवाकार रचना कहे। ये यव जैसी रचना दिखाई देती है ना इस तरह से, ये काल की अपेक्षा वहां रचना कही थी। अब यहां कहते हैं ये जो यव मध्य है उसके ऊपर असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा योग स्थान है ना यहाँ पर, तो यहां पर ये योग का भी पलटना होता है, दो समय में पलटेगा, तो ये असंख्यात गुणा हुआ। ये जो कुछ चार वृद्धि और चार हानि हमने यहाँ देखी थी आपको याद होगा, तो देखो ये संख्या असंख्यात में है, जहां अनंत संख्या होती है वो षडगुण हानि वृद्धि वहां हो सकती है, यह संख्या असंख्यात है तो यहाँ चार ही वृद्धि हानि संभव है। कौन सी चार कह सकेंगे आप? असंख्यात से शुरू होगा, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि और असंख्यात गुणा वृद्धि। ये जो है बात है वो यही पॉसिबल है ऊपर की ओर। तो यहां लिखा था देखो 59 पेज पर, ये हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो एकदम जंप नहीं होगा। देखो यहां इन योग स्थानों का विशेषणभूत काल, यानी काल की अपेक्षा यहां यवाकार है ना, अपनी संख्या की अपेक्षा यवाकार हो जाता है, क्योंकि वह मध्य में तो स्थूल है। देखो ये यहां जो हमने पाटी पर देखा था मध्य में तो बड़ा है, और दोनों ही पार्श्व भागों में यानी दोनों ही ओर क्रम से हानि होती गई है, यही यहां बताया हमने। अभी शुरू से यहां से अगर देखेंगे तो ये चार वाले, पांच वाले, छह वाले, सात वाले, आठ वाला, फिर सात, छ, पांच, चार, तीन और दो, इस तरह से इसकी रचना हो जाएगी। इस प्रकार इन चार आदि समयों से विशेषित योग स्थान भी 11 प्रकार का है। कौन से 11 प्रकार लिखेंगे? यही सर, 1, 2, 3, 4 इसको गिनेंगे तो ये 11 प्रकार के हो जाते हैं। अन्यथा वह काल का विशेष नहीं बन सकता, क्योंकि योग से पृथकभूत काल नहीं पाया जाता। यानी ये लगातार कितने समयों तक वही योग है उसकी बात चल रही है। यहां योग को ही यव कहा है और उसका मध्य योग यव मध्य कहलाता है, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है उसको यव मध्य कहा। यव मध्य से 8 समय वाले योग स्थान लिए जाते हैं, यह उस कथन का तात्पर्य है। यानी कोई योग स्थान ऐसे वो 8 समय तक चलते हैं। उस योग उस यव मध्य से ऊपर सर्व योग स्थानों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा। ये जीव, ये जो ऊपर के इतने योग स्थान है असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा हमने देखे थे ना, तो यही ये पॉसिबिलिटी है कि वो अंतर्मुहूर्त काल तक यहां स्थित रहा। ये बात फिर अभी बताने वाले, इसलिए मैंने पहला रेफरेंस निकाला है, क्योंकि वहां चार वृद्धि और चार हानियों की संभावना देखी जाती है। यहीं पर वो अंतर्मुहूर्त रहकर चार हानि वृद्धि जो है असंख्यात गुणा वगैरह जो कुछ है वो पॉसिबल है। अब यहां फिर हम अपने विषय पर आते हैं। अभी हमने क्या देखा था, जीव यव मध्य में नीचे से ऊपर के थोड़े ही ज्यादा है, और यहां क्या देखा है असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा है। तो अंतर्मुहूर्त तक ये असंख्यात योग स्थान है, यहाँ अंतर्मुहूर्त तक रहने की पॉसिबिलिटी यहीं पर है। ये बात, ये इतनी सारी जो झमेला हमने देखा था प्रेरणा बहन कहते क्यों देखा हाँ ये योग यव मध्य इतना ही बता दिया उन्होंने, तो उसमें जीव यव मध्य लेना, जीव योग यव मध्य लेना कि काल योग यव मध्य लेना है, काल की अपेक्षा योग यव मध्य लेना, उन्होंने सूत्र में तो योग यव मध्य इतना ही लिख दिया है, तो काल की अपेक्षा लेना कि जीवों के आधार से लेना है, इसकी बात। हाँ तो काल में ही ये असंख्यात अंतर्मूर्त तक रह के असंख्यात बार ये हानि वृद्धि संभव है, इसलिए वो अभी बताएंगे। अब इसको विशेषार्थ में पढ़ेंगे, देखो ये उसके विशेषार्थ के ऊपर का एक फिर वाक्य पढ़ते इस प्रकार, यानी वहां तो हमने ये सारा जो देखा अभी तक उसमें क्या सिद्ध हुआ, अविरुद्ध आचार्य वचन से जाना जाता है कि जीव एव मध्य के अधस्थान से उपरिम स्थान विशेष अधिक है, उतना तो सिद्ध किया अल्प भूतव वगैरह के द्वारा। अब विशेषार्थ में बता के फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ एवं संसरिदूण थोमावसे से जीवी दव्ये इत्यादि सूत्र की व्याख्या चालू है। हमने देखा 28वां सूत्र देखा था हमने अभी, हाँ उसी की बात चल रही, इसीलिए हमने फिर दोबारा सारे देखे थे सूत्र 57 पृष्ठ पर 28 नंबर का सूत्र, देखो सूत्र में ऊपर प्राकृत में एवं संसरिदूण यानी इस प्रकार परिभ्रमण करके, इस प्रकार यानी पहले बादर पृथ्वी का एक की बात देखी, उसके बाद त्रस पर्याप्त काल वगैरह वगैरह देखे थे, और उसके बाद वो नरक गति का सातवें नरक वाला जीव लिया था, तो एवं संसरिदूण इस प्रकार परिभ्रमण करके थोवावशेषे जीवित अवये यानी जीवन के थोड़ा शेष रहने पर जोग जव मज्झ सुवरिम अंतोमुहूर्त अधम अच्छिदो यानी योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा, उसके लिए ये बात चल रही है कि कौन से योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त तक रहा, तो अभी विशेषार्थ चालू है। यहाँ ये 28 आदि जो सूत्र की व्याख्या चालू है, इसमें योग एवं मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक रहा यह कहा गया है। प्रश्न यह है कि यहाँ योग एवं मध्य से किसका ग्रहण किया जाए, योग एवं मध्य का ग्रहण किया जाए या जीव एवं मध्य का, यानी वो काल की अपेक्षा योग यव मध्य लेना कि जीव के आधार से जो जीव योग यव मध्य। वीरसेन स्वामी ने बतलाया है कि योग यव मध्य के अधस्तन भाग से उपरिम भाग असंख्यात गुणा होने से वहां चारों हानियां और चारों वृद्धियां संभव है, अभी हमने पढ़ा था कौन सा प्रश्न हमने निकाल के देखा था ना अभी, वहाँ ये बात लिख के हाँ 59 पर हमने देखे थे हाँ पृष्ठ हाँ चारों वृद्धियां चारों हानियां संभव है और अंतर्मुहूर्त काल तक जीव का वही रहना संभव है, इसलिए योग यव मध्य इस पद द्वारा उसी का ग्रहण करना चाहिए जीव यव मध्य का नहीं। इस पर यह प्रश्न हुआ कि जीव यव मध्य के उपरिम भाग में जीव का अंतर्मूर्त काल तक रहना क्यों संभव नहीं है, विशेषार्थ में यह हमने जो कुछ पढ़ा उसी की बात चल रही है। वीरसेन स्वामी ने इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्ररूपणा प्रमाण श्रेणी अवहार भागाभाग और अल्प बहुत्व इन छह अनुयोग द्वारों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि योग एवं मध्य संगीत जीव एवं मध्य के नीचे के भाग से उपरिम भाग मात्र विशेष अधिक है, इसलिए इसके उपरिम भाग में जीव का अंतर्मूर्त काल तक रहना संभव नहीं है, ये सारा अल्पभूत वगैरह के द्वारा उन्होंने बता दिया। यही कारण है कि यहाँ योग यवमध्य पद से उसी का ग्रहण किया गया है, जीव यवमध्य का नहीं। अथवा यहाँ के जीवों के अल्प बहुत्व से वह जाना जाता है, यथा जघन्य योग। ये तो विशेषार्थ हो गया बीच में, ऊपर से अभी ये फिर कंटिन्यूटी चल रही है। जघन्य योग स्थान के जघन्य जीव निषेक से लेकर, ये निषेक किसको कहना हमने देखा था ना, ये जो जीव यव मध्य में हमने देखा था, ये नीचे वाला योग स्थान उसको जीव, जीव के आधार से बताया जीवों की संख्या, तो इस एक एक योग स्थान को हम निषेक कहेंगे, तो यहाँ इसको जीव निषेक कहा। जघन्य योग स्थान के जघन्य जीव निषेक से लेकर उत्कृष्ट योग स्थान तक जीव निषेकों की संदृष्टि यह है। हमने ये 32 देखे थे जीव निषेक, इसमें नीचे 3 गुनहानी, ऊपर 5 गुनहानी, 12 और वहां देखे थे ना, 32 देखे थे हमने। तो देखो पहला ये 5 गुना, नीचे के 3 और ऊपर की 5 मिलकर ये 8 गुनहानी बताई है। 16 से हमने शुरू किया था, जघन्य योग स्थान 16 था, 16 20 24 28 इस तरह से, तो एक एक निषेक कितना है उसकी संख्या बताई जीवों के, उसको संदृष्टि कहा। संदृष्टि में गुणहानि का अध्वान 4, यानी एक एक गुणहानि में 4 योग स्थान बताए। योग स्थान का अध्वान 32, टोटल योग स्थान है 32। नाना गुणहानि शलाकाएं 8, अभी हमने देखे यहाँ 8 शलाकाएं गुणहानि बता के निकाल के बताई उन्होंने। ये वो मध्य से नीचे की 3, देखो 128 जहाँ आया है उसके नीचे की ओर 3 गुणहानि है और ऊपर की 5। हाँ, वो 128 से लेकर लेना, 128 वाली वो एक बीच वाली गुणहानी है ना, 128 ये तो सेंटर का पॉइंट बताया उन्होंने। नीचे वो ऊपर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण क्रमशः 8। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं? हाँ, जितनी गुणहानी है उतनी बार 2 लिखकर गुणा करना। नीचे 3 है तो 2 × 2 × 2 8 हो गए, और ऊपर 5 गुणहानि है तो 5 बार 2 लिख के गुणा करेंगे तो 32 आएगी, तो उसका 8 और 32। तथा प्रक्षेप भागहार 4 है। प्रक्षेप भागहार ने स्टार्टिंग से हमने शुरू किया था ना, 16 है जघन्य जीव स्थान योग स्थान में जीवों की संख्या 16 है, और उसको हमने गुणहानि 4 उसका भाग दिया था, तो 4 प्रक्षेप आया, 16 में 4 ऐड करते गए 32 तक, बाद में वो प्रक्षेप भी बढ़ता गया, उसकी तो बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। अब अवहार काल की प्ररूपणा करते हैं, यहां तक तो श्रेणी वगैरह उसकी बात हुई, अनंत उपनिधान और परंपरा उपनिधान। अब अवहार काल की बात करेंगे। यहां सर्वप्रथम योग स्थान के सब जीवों को योग यव मध्य के जीवों के प्रमाण से करते हैं। प्रमाण से करना है उतने प्रोपोर्शन में बताने हैं, योग यव मध्य में कितने हैं, जीव यव मध्य 128 है, तो 128 के प्रोपोर्शन में करना है ना, 128 का एक भाग तो सबके कितने भाग, इस तरह से। यथा यव मध्य की गुणहानि के क्षेत्र को स्थापित कर और इन चारों प्रकारों से उसके खंड कर समीकरण करके यव मध्य के प्रमाण से करने पर गुणहानि के 3/4 भाग मात्र यव मध्य और यव मध्य का चौथा भाग उत्पन्न होता है, उसकी संदृष्टि ऐसी है, यानी 3/4 और 1/4। उसका उदाहरण देके समझाते अभी। यव मध्य की गुणहानि 416, 128, 112, 96, 80 मिलकर 416 हो जाते हैं, और यव मध्य है 128। यहाँ 416 में 128 का भाग देने पर तीन यवमध्य, देखो 128 इज इक्वल टू एक यवमध्य, तो 416 में कितने यवमध्य आएंगे, क्योंकि यवमध्य के प्रमाण से करना है, यानी 128 का एक एक हिस्सा हमने मान लिया एक भाग, तो ऐसे कितने भाग हो गए, तो 416 डिवाइडेड बाय 128, तो कहते तीन यवमध्य और एक यवमध्य का चौथा भाग उत्पन्न होता है। इस प्रकार यवमध्य की गुणहानि में कुल 3.14 यवमध्य होते हैं, यानी 3.25 हो गए ना यवमध्य इतने में, बीच वाले गुणहानि में। यहाँ यवमध्य की गुणहानि के द्रव्य से तृतीय गुणहानि के अंतिम तीन स्थानों का द्रव्य और चौथी गुणहानि के प्रथम स्थान का द्रव्य लिया गया है। एक ही बात है, यहाँ 80 से शुरू किया उन्होंने, 80, 96, 112 और 128, इसको इन्होंने मध्यम गुणहानि का द्रव्य कहा। फिर द्वितीयादि गुणहानि के द्रव्य का भी, इसमें प्रथम गुणहानि के द्रव्य प्रमाण असत द्रव्य देकर समीकरण करने पर यह भी उतना ही होता है, यानी 3/4 और 1/4। विशेष इतना है कि जघन्य योगस्थान के जीवों को छोड़कर द्वितीय योगस्थान के जीवों से लेकर प्रथम गुणहानि ग्रहण करना चाहिए, यानी 20, 24, 28, 32 ऐसा उन्होंने लिया। अभी उदाहरण बताते हैं। देखो यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं, तीसरी गुणहानि में क्या है, 64, 80, 96, 112 अपने टेबल में देखना। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ जो यवमध्य की गुणहानि बताना चाहते हैं, तो वो व्हाट डू दे मीन बाय यवमध्य की गुणहानि, तो यहाँ इन्होंने तीसरी गुणहानि का दूसरा जो निषेक है वहां से शुरू किया, 80, 96, 112 और 128, इसको उन्होंने कहा उसकी गुणहानि, इसकी संख्या 416 आती है टोटल। यहां भी वही बात करना चाहते हैं, पहला स्थान छोड़ना है, 16 को छोड़कर 20, 24, 28 और 32 का उन्होंने ग्रहण किया है। देखो द्वितीयादि गुणहानि का द्रव्य 344, जो द्रव्य ऊपर से मिलाया गया है वह 72, कुल जोड़ 416। द्वितीय यानी दो से लेकर आगे के, यानी पहले की टोटल 72 होती है, यहाँ पर 16 को छोड़कर उसकी टोटल 72 हो जाती है। तीन सौ चवालीस कहाँ से लिया उन्होंने, और टोटल उनकी 416 कर दी। पहले पढ़ लेते। हाँ हाँ नीचे तीन गुणहानि है, अच्छा अच्छा हाँ, द्वितीय दिन उसके ऊपर के लिए ही ना। कौन से तीन की बेरी? नीचे तीनों की। तीन सौ चवालीस में उन्होंने 72 जोड़े हैं, कुल जोड़ 416 निकाला। और प्रथम गुणाने का द्रव्य उन्होंने 72 जो निकाला वो 20, 24 और 28 का निकाला। प्रथम गुणाने में से 72 लिए उन्होंने और द्वितीय आदि गुणाने ले लिया। 810,000 दूसरे में तो 176 आती है टोटल, 344 कहां से निकाला? देखो पढ़ते पहले देखो, द्वितीय आदि गुणहानि का द्रव्य 344। द्वितीय आदि कहा यानी द्वितीय, हाँ हाँ और 72 उन्होंने पहले वाले 16 को निकालकर उसका द्रव्य उसमें मिला दिया है। देखो आगे पढ़ते हैं, द्वितीय आदि गुणाने का द्रव्य 344, जो द्रव्य ऊपर से मिलाया गया है वह 72, कुल जोड़ 416। यहां भी 416 में 128 का भाग देने पर तीन यवमध्य और एक यवमध्य का चौथा भाग उत्पन्न होता है। यहाँ जो 72 संख्या प्रमाण द्रव्य ऊपर से मिला गया है वह प्रथम गुणाने का द्रव्य है। इसमें से जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण 16 घटा दिया है। हाँ वो 72 पहले के वो तो ख्याल में आते हैं, पर 344 कहाँ से निकाला? क्योंकि 32 से लेकर आगे की वो 176 होती है वहां पर द्वितीय में। द्वितीय आदि कहाँ, आदि में कहाँ तक लेना उसको? हाँ 344 आते हैं, पर वो कहाँ तक के लिए? 344 कहाँ से लिया उन्होंने? ठीक है देखना जरा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके देखो। यहाँ वही लिखा ना, देखो यवमध्य की बात है, यहाँ यवमध्य की गुणाने के द्रव्य से तृतीय करने के अंतिम स्थान। नहीं ऊपर तो उन्होंने यही लिखा है, द्वितीय आदि गुणाने के द्रव्य का भी इसमें प्रथम गुणहानि के द्रव्य प्रमाण असत द्रव्य देकर समीकरण करने पर यह भी उतना ही होता है। उन्होंने पहले 80 से लेकर 128 तक बताया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इन देखो, चौथा भाग उत्पन्न होता है। इस प्रकार और चौथी गुणहानि के प्रथम स्थान का द्रव्य लिया गया है, यानी 80, 96, 112 और 128। चौथी गुणहानि, यहाँ गुणहानि 8 है, चौथी गुणहानि यानी 8, 128 वाली। हाँ, परंतु यहाँ यवो मध्य के लिए उन्होंने 80 से लेकर शुरू किया, यानी 80, 96, तृतीय गुणहानि के 3 और चौथी गुणहानि का पहला भाग, इसको एक साथ लिया उन्होंने। देखो देखो, यही अश्विन भाई ने पूछा था, यहाँ यवो मध्य की गुणहानि के द्रव्य से व्हाट डू दे मीन बाय दैट। हाँ, ऊपर हम पढ़ेंगे, ऊपर इसमें देखो, हम उसकी बात करते हैं, प्राकृत में पढ़ेंगे अभी हम, 76 पेज पर नीचे के 2 लाइन, संपही अवहार काल परूपणा कीरदे, यानी अवहार काल परूपणा करते हैं, तथ एथ ताव जोगठान सव जीवे जवमज्ज जीव प्रमाणे न कस्सामो, यानी ये नीचे हमने अर्थ पढ़ा था ना, जोगठान सव जीवे ने योगस्थान के सभी जीवों को यव मध्य के जीव प्रमाण से करते हैं, यानी अपना प्रमाण एक यूनिट कितना है, नहीं 128 का यूनिट है, योग यव मध्य कितना है, 128 वाला। हाँ, तम जहा जवमज्ज गुणहानि खेतम ठवीय, यव मध्य का गुणहानि का क्षेत्र उन्होंने बता दिया, उसके लिए वो 128 को 64-64 में डिवाइड किया और 80 को 40-40 में किया, क्या ये, क्या ये क्या गड़बड़ी की पता नहीं। एदे ही चदुही विहाने ही पादीय समीकरणम करिय जवमज्ज प्रमाणेन कदे गुणहानिये तिन्नि चतुर्भागमेत्त जवमज्जानि जवमज्ज चतुर्भागोज उपज्जति। ये तो हमने देखा था, 3 यवमध्य और यो यवमध्य का चतुर्थ भाग उत्पन्न होता है। तस्से सा संदिट्ठी, ये 3 और एक एक, एक चतुर्थांश। पुनो विधियादि गुणहानि दौवंपि परम गुणहानि दौवमेतत्संतम दादुन समीकरणे कदे एदंपि तृतीय चैव होदि। यानी द्वितीय आदि गुणहानि द्रव्य में भी वो पहले गुणहानि का द्रव्य देने पर उतना ही होता है, इतना उनको कहना है। नवरी जहन्न जोगठान जीवे मोत्तुन विदीय जोगठान जीव पहुड़ी पड़म गुणहानि घेतव्वा एद दोवी मिला विदे दिवड्ड गुणहानि मेत्त जवमज्जानि जम मज्जदु भागोच उपज्जदी। अभी इसको पढ़ेंगे अभी हम, वो 344 कहाँ से लिया वो पता नहीं चला। इन दोनों को ही मिला देने पर, दोनों को इन्हें उस सवा तीन और सवा तीन, नहीं नहीं थ्री पूर्णांक एक चतुर्थांश, ऊपर हमने देखा था ना 416 को 128 का भाग दिया तीन यवमध्य और एक यवमध्य का चौथा भाग उत्पन्न होता है, यहाँ तक लिया था ना हमने। ये संदृष्टि उन्होंने उसकी बताई है, ऐसी उसकी ऐसी संदृष्टि है। इन दोनों को ही मिला देने पर डेढ़ गुणानि मात्र यवमध्य और एक यवमध्य का द्वितीय भाग उत्पन्न होता है, उसकी संदृष्टि वो छह पूर्णांक एक द्वितीयांश है। द्वितीय आदि गुणानि का द्रव्य 344 और उसमें वो 72 मिला दिया। पहले उन्होंने बीच वाली का बताया, फिर हाँ द्वितीय आदि गुणानि का संत। वही प्रोपोर्शन है सब जगह, हर एक गुणानि में वही प्रोपोर्शन है, उनको कहना है। हाँ 176 आया था वहाँ, उसमें उन्होंने वो 72 मिला दिए थे ना, तो 416 कर दिए थे उन्होंने उसको 72 मिला के। वो 344 कहाँ से आए वो खबर नहीं पड़ी नहीं अपने को। हाँ 72 पहले तीन 16 को छोड़कर 20, 24 और 28 की टोटल 72 होती है। वो 72 टोटल होती है, वो उसमें मिला दी थी उन्होंने। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये 6.5 हो गए अभी, यानी डेढ़ गुणानि मात्र यवमध्य। आप पढ़ेंगे तो पीछे का आता है। आगे शायद समझाएंगे फिर। हाँ देखो ये 6.5 की भी ऐसी उन्होंने संदृष्टि की है, ये उनके लिखने की ऐसी संदृश्य। देखो 78 पेज पर पहले ऊपर 6 के नीचे आधा लिखा है ऐसा, ये संदृष्टि है उनकी 6.5 वाली। वैसे वहां वो संदृष्टि थी ना 3.14 वाली, वो लिखने की वहीं की पद्धति। अब ये उदाहरण फिर दिखाते यहाँ, देखो 3.14 और 3.14 6.12 हो जाते हैं, इसको कहते हैं यवमध्य। यवमध्य से उपरिम द्रव्य को भी, ये तो नीचे का द्रव्य बता दिया उन्होंने, यवमध्य से नीचे का द्रव्य पूरा। यवमध्य के प्रमाण से करने पर इतना ही होता है, कितना 6.5 यवमध्य, क्योंकि यहाँ अविद्यमान एक अंतिम गुणहानि का द्रव्य यवमध्यों के द्रव्य में मिलाया गया है। ये नहीं, वो जो कुछ नहीं है वो मिलाकर उसका वो दोनों ओर 6.5 वो निकाल रहे हैं। ये उदाहरण हम समझेंगे। यवमध्य का उपरिम द्रव्य 806 वो तो उसकी टोटल हो जाएगी 416 इसकी होगी, ये आधी आधी हो जाएंगी ना आगे। हाँ 208, 104, 52 और 26 आगे, ऐसे यहाँ भी 208 और 104 इसकी हुई थी ना। उन्होंने टोटल की, हाँ यहाँ नीचे ऐसे 128 को दोनों ओर लेके वो ऐसी की होगी उन्होंने। दो सौ अट्ठाईस को कॉमन रखेंगे तो ही वो पॉसिबल है इधर। अभी वो आगे का समझाएंगे ना, फिर हमको पीछे का ख्याल में आएंगे। देखो यव मध्य का उपरिम द्रव्य 806, 806 कैसे निकाले, देखो यव मध्य के बीच वाला छोड़कर अभी आगे के 208, 104, 52 और 26 और 416 भी लेना। हाँ देखो हर एक गुणाने के नीचे टोटल लिखना उसकी। हाँ वो यव मध्य के ऊपर तो आसान है ना, आधी आधी चली जाएगी, 416 की होती है 208। ये 76 पेज पर जो टेबल बनाया है ना, तो उसमें जो सेंटर की गुणहानी है उसका टोटल 416 हमने निकाली थी। देखो उसके आगे आधी आधी होती चली जाती है, 208, 104, 52 और 26। नहीं लेफ्ट में उतना नहीं कम होता है, लेफ्ट में अगर 128 को कॉमन पकड़ के ऐसा ले लेंगे तो हो सकता है, यानी उसको 208 ऐसा ले लेना। नहीं मिलेगी 312 और 32, 344। हाँ नहीं वो संदृष्टि है उनकी, तीन पूर्णांक एक चतुर्थांश। ऊपर देखिए अभी देखिए 76 पेज पर जो स्टार्टिंग में 6 के नीचे 1 और 2 लिख दिया, 76 पेज पे प्राकृत में संदृष्टि 6.5 की कैसी लिखी उन्होंने, देखो स्टार्टिंग में पहली लाइन प्राकृत की 78 पे। ये संदृष्टि लिखी, वैसे उसकी संदृष्टि उन्होंने ऐसे लिखी, ये संदृष्टि लिखी उन्होंने, 3.1 3/4, 1/4 ऐसा लिखा उन्होंने।
क्या
किस में नहीं होती है? ये 128 सेंटर पॉइंट है, वो दोनों ओर ऐसा लेना है, इस तरह से लेना है उसको। 128 को दोनों को जगह कॉमन रखेंगे, इन गुनहानी बनाएंगे तो ही होता है। तो वो तो हाँ, 128 को दोनों जगह लेंगे तो इस तरह से वो सेंटर पॉइंट लेना है उसको। और ये भी ऐसा हो जाता ना, ये 208 अगर ले लेंगे 64 वाली, ये 208 में ये 32 से लेकर सब मिलाएंगे तो उतनी बात होती है। देखो 208 इसको, ये 208 फिर इस यहाँ से करना 64 से आगे, यानी 40 से लेकर 64 तक 208 हो जाएगी ना। और उसमें फिर 104 मिला देना 20 से लेकर 32 तक, 104 हो जाएंगे, ये 208 हो जाएंगे, 312 हो जाएगा ना यहाँ पर। और फिर वो उसमें 32 मिला है, ऐसे वो 32 क्यों मिला ना, फिर ऐसा हो जाए इसके कोई उत्तर नहीं मिल रहा। हाँ चलो आगे मिल जाएगा, अभी आगे का तो मिल गया ना उदाहरण, यव मध्य के ऊपर 8 से 6 तो होता है, 128 सहित लास्ट गुणहानी के लास्ट निषेक तक 806 हो जाते हैं। अंतिम गुणहानी का द्रव्य 26, ये टेबल के साथ टैली करना आप। अंतिम गुणहानी कहने अंत के जो चार निषेक है 8, 7, 6, 5, कुल जोड़ 832। यहाँ 832 में यव मध्य के द्रव्य 128 का भाग देने पर 6.5 यव मध्य आते हैं। यव मध्य की ऊपरी गुणहानि 5 है, उनका कुल द्रव्य 806 मात्र होता है, किंतु इसमें अंतिम गुणहानि का द्रव्य दोबारा मिलाकर 6.5 यव मध्य प्राप्त किए गए हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ होगा हाँ, ये दोबारा मिला ना, असत द्रव्य मिला है बोला ना उन्होंने, असत द्रव्य बताया, वही कब उसी की बात चल रही है। यानी एक्स्ट्रा मिलाया, हाँ इन दोनों ही द्रव्यों को मिलाने पर 1+3 गुणहानी मात्र यव मध्य होते हैं। उनमें पूर्व प्रवेशित अविद्यमान यव मध्य को कम करने के लिए 1 अंक कम करना चाहिए। ये 6.5, 6.5, 13 हो गए, और पहले वो एक्स्ट्रा मिलाया था उसके लिए अंक कम कर दिया, ये तो संदृष्टि है ना, इसलिए 12 कर दिया उन्होंने। इस प्रकार अव्युत्पन्न जनों के व्युत्पादनार्थ हम अव्युत्पन्न ही रह गए 3 गुणहानी मात्र यव मध्य होते हैं ऐसा कहा है। ओ देखो 12 यव मध्य आते हैं, इतनी तो संख्या आ गई ना अपने, टोटल कितने हैं तो 12 यव मध्य है। टोटल द्रव्य इज इक्वल टू यव मध्य मल्टीप्लाइड बाय 12। तो 12 क्या है, चार की एक गुनहानी होती है तो बारह की तीन गुनहानी होती है, तो ये इस तरह से तीन गुनहानी मात्र यह मध्य कहा उन्होंने। तीन गुनहानी यानी एक संख्या ली उन्होंने, तीन गुनहानी कितनी है, बारह है, तो बारह यव मध्य कहने के बदले तीन गुनहानी यव मध्य कहा। ये सारा डिराइव करते करते कहां तक आ गए। हाँ वही अभी इसमें ले लेना। हाँ किंतु हाँ कुछ बोला। हाँ अव्युत्पन्न ने हमारे जैसे जो कुछ नहीं समझते उनके व्युत्पादनार्थ तीन गुनहानी मात्र यव मध्य होते हैं ऐसा कहा है। यानी टोटल संख्या कितनी है तो तीन गुनहानी मल्टीप्लाइड बाय यव मध्य, क्योंकि हमने वही से निकाला था ना पूरे, जैसे अभी विनोद भाई ने कहा पूरी संख्या 1412 ली थी, उसको कुछ कम 14 से 22 कुछ कम 12 से उसको डिवाइड किया था, कुछ कम 12 यानी कुछ कम तीन गुनहानी। हाँ वही बात यहाँ बता रहे हैं। देखो किंतु सूक्ष्म बुद्धि से देखने पर कुछ कम तीन गुनहानी मात्र यव मध्य होते हैं। ये तीन गुनहानी यव मध्य का अर्थ क्या है, तीन गुनहानी यानी 12, यव मध्य यानी 128, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 128, अभी 12 में कुछ कम है सूक्ष्म बुद्धि से देखने पर, इतनी बात यहाँ बताना चाहते हैं। देखो सूक्ष्म बुद्धि से देखने पर कुछ कम तीन गुनहानी मात्र यव मध्य होते हैं। इसका कारण यह है यहाँ पर जघन्य योग स्थान के जीवों से कम प्रथम व अंतिम गुनहानी के जीवों की जो यहाँ अविद्यमान है अधिकता पाई जाती है, क्योंकि पहले हमने 72 एक्स्ट्रा मिलाए थे, अधिकता पाई जाती कहा ना उन्होंने, और वहां पर भी अंतिम गुनहानी के द्रव्य को भी एक्स्ट्रा मिलाया था 26, क्योंकि वो 12 टोटल आने के लिए, कंप्लीट फिगर आने के लिए हमने क्या किया था, दोनों ओर एक्स्ट्रा मिलाया था, उन्होंने कहा था असद द्रव्य को मिला रहा है, वह अधिक द्रव्य संदृष्टि में 114 मात्र है। पहले 72 मिलाया था ना, यहाँ तो 26 मिलाए थे, 114 में से 26 गए। तो 88 एक्स्ट्रा मिलाए थे, ये 16 और 72 दोनों एक्स्ट्रा मिलाए उन्होंने। पहली गुनहानी भी एक्स्ट्रा ली है, हाँ इसीलिए पहले भी हमने 72 एक्स्ट्रा मिलाए थे ना उसमें, और यहाँ कहते वो 26 वाली एक्स्ट्रा मिलाते थे। वो उसकी 6.5 आने के लिए जितने एक्स्ट्रा जो चाहिए थे उसको उसमें मिलाया था, इसलिए वो इतना द्रव्य एक्स्ट्रा मिलाए उन्होंने। वो भी 344 ऐसे एक्स्ट्रा मिला के ही आया उनकी संख्या, और उसमें फिर 72 मिला दिया और। अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा असंख्यात यव मध्य प्रमाण है। अभी उदाहरण 6.5 और 6.5 13 यव मध्य, ये जो अभी हमने पढ़ा उसी को फिर बता रहे। किंतु इनमें यव मध्य की संख्या 128 दो बार सम्मिलित हो गई है। हाँ देखो 128 दोनों ओर लिए उन्होंने, अतः एक यवमध्य कम कर देने पर कुल 12 यवमध्य रहते हैं। आगे की संदृष्टि में उन्होंने 128 फिर पकड़ा है, क्योंकि 128 को लेकर ही फिर दोबारा 816 प्राप्त होते हैं, तो इसलिए पहले की ओर भी 128 ले लिए उन्होंने। इसीलिए उन्होंने देखो अभी ये तीन गुना नहीं, यहाँ कैसे सिद्ध किया अपना जो पहला जो गणित था ना। हाँ पेंसिल, देखो पहले उन्होंने कैसे की है वो चार सौ सोलह यहाँ से लेना, अपना पेज नंबर 76 निकालना। उसमें 80 तीसरी गुणानी ना, 80 उसके दूसरा पॉइंट 80 छियानवे 112 और 128 इसको मिलाकर 416 होते हैं टोटल। देखो इस तरह से लेना तिरछा उसका, 128 हमने बीच में लिया था ना, अभी मैं पार्टी पर दिखाती हूँ। देखो अभी पहली गुणानी दूसरी गुणानी ऐसे जो वहाँ कॉलम है यहाँ 16 वगैरह है, देखो 16 20 वगैरह वगैरह, यहाँ 32 वगैरह वगैरह, यहाँ 64 आगे 128। तो पहले ऐसा ले लेना, इसकी टोटल 416, फिर इस तरह से, फिर ऐसी टोटल इसके आधे 208, फिर इसकी आधी 104। नहीं नहीं वो आसान होगी ना अपने आधी आधी करने में, 104 हो गई ना अभी। देखो यहाँ भी इस बाजू हमने क्या क्या लिया था टोटल, यहाँ भी 3.5 और वहाँ भी 3.5 करनी थी उनको गुणाने, क्योंकि यहाँ भी 416 208 104 लिए थे और फिर 52 और 26 लिए थे ना यहाँ पर। देखो अभी अभी टेबल देखना आप, टेबल में हमने देखा था आगे वाली जो गुणहानी उसकी टोटल करने के लिए क्या देखा था, 416 208 104 52 और 26 ऐसे लेके बाद में 126 और मिलाए थे उसमें। अभी इसमें इस और करने के लिए ये 128 इस बाजू भी लेना है, 128 इस बाजू भी लेना है। तो अभी हम उतरते क्रम से जाएंगे, पहले वाली वो 416 प्लस 208 प्लस 104 और अभी यहाँ उन्होंने 52 और 52 दो बार लिया था वहां पर, और उसके बदले उन्होंने वो 72 बाद में मिला है। तो अभी उस इसमें उन अपने को ये 16 मिलाने पड़ेंगे, ये पहली गुणहानी जो है 16 भी लेना और फिर बाद में और एक बार पूरी गुणहानी लेना। देखो ये 208 आए, 104 आए, अभी अपने के लिए कितना कम है 806 करने के लिए, 52 और 52 वो पूरी पहली गुणानी, अभी पहली गुणानी में से 16 बाकी थे ना उसको एक बार ले लेना और फिर पूरी एक गुणानी फिर दोबारा लेना 72 प्लस 16 वाली। वो नीचे के तीन पॉइंट्स 72 होते हैं, अभी वो 72 को भूल जाना, हम ऐसा ले लेंगे अभी 208 और 104 कैसे होते हैं हमने देखा था। तो अभी उसमें वो 16 भी मिला देंगे और फिर दोबारा पहले पूरी गुणहानी लेंगे तो ये फिक्स फिगर आएगी। देखो अभी 416 उल्टा ले लेना, 416 208 अभी 104 और 16 उसमें मिला दो, 104 और 16 है ना, पहली गुणहानी से सब ले लिया। अब पूरी पहली गुणहानी कितनी है? हाँ 88। अभी इसकी टोटल कितनी होती है? 832 आए ना, हमको 832 ही करने थे। देखो आगे उसको 128 का भाग देते तो 6.5 आते हैं। तो ये पहली यहाँ 16 से लेकर 128 तक की संख्या टोटल की, और उसमें पहली गुणहानी एक्स्ट्रा मिला दी पूरी, वो 344 आप भूल जाओ। उन्होंने अलग पद्धति से उसको कहा उसमें वो 32 मिला देंगे हम 16 से लेकर, तो वो हो जाती है पूरी पहली गुणहानी से 16 से लेकर 128 तक की संख्या नापनी, मिला पहले ऐड करना और उसमें पहली गुणहानी एक्स्ट्रा मिला देना 88 वाली, तो दोनों आर 832 हो जाएगी। यानी यहाँ भी 3.5 ये 3.75 हो गए ना, और उसकी 6.5 टोटल हो गई, नहीं 6.5 इधर और 6.5 उधर हो गई, और टोटल उसकी 13 हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ भी हमने एक्स्ट्रा मिलाया और वहाँ भी एक्स्ट्रा मिलाया, तो एक्स्ट्रा मिलाया वो कम करने के लिए 128 हमने दोनों ओर लिए थे, वो निकाल देना फिर। यानी जितना कम था उतना उन्होंने मिला दिया है बस। देखो यहाँ हम ये उदाहरण वाला जो है 78 पृष्ठ पर एक दो लाइन पढ़ेंगे, उदाहरण लिखा है देखो नीचे से दो लाइन में, ये 6.5 + 6.5 13 यवमध्य, 13 यवमध्य का अर्थ है 13 × यवमध्य, यवमध्य की वैल्यू 128 है, किंतु इनमें यवमध्य की संख्या 128 दो बार सम्मिलित की है, यानी एक 13 यवमध्य में से एक यवमध्य कम करना है, 128 कम करना का अर्थ है एक यवमध्य कम करना, तो 12 यवमध्य रह गया, अतः एक यवमध्य कम कर देने पर कुल 12 यवमध्य रहते हैं। फिर भी यह स्थूल दृष्टि से परिगणना है, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 114 संख्या कम होकर 11 से कुछ अधिक यवमध्य आते हैं। हमने उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशन कही थी ना, उसमें 832 संख्या वो 6.5 करने के लिए हमने उसमें कुछ मिला दी थी, उसको कम करने के लिए 12 में से भी कुछ कम करना पड़ेगा, इसलिए कुछ कम 12 कहेंगे। तो 12 के लिए अभी उसके लिए भी एक तो यवमध्य लिखा, 128 के लिए उन्होंने यूनिट लिख दिया यवमध्य, अभी 12 के लिए यूनिट लिख देंगे 3 गुणहानी, तो 3 गुणहानी यवमध्य का अर्थ इतना लंबा चौड़ा होता है। उनको संख्या तो कहनी वो 1422, 1422 न कहते हुए यवमध्य के यूनिट से उसको नापा तो कितने हो गए, तो 12 यवमध्य हो गए, परंतु 12 यवमध्य कहने के बदले 3 गुणहानि यवमध्य कह दिया और उसमें भी कुछ कम कर दी। तो सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 114 संख्या कम होकर 11 से कुछ अधिक यवमध्य आते हैं। अभी 128 से वो 114 कितने गुना है इसे उसको मत सोचना, क्योंकि ये तो काल्पनिक फिगर्स है, इसलिए तो वो उन्होंने वही लिखा है आगे। देखो अब इस हानि के विधान को कहते कितना कम है, तो यवम मध्य 128 अंक की अपेक्षा यदि एक रूप की हानि पाई जाती है, यानी 128 इज इक्वल टू 1, तो 114 की अपेक्षा कितनी हानि होगी। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर लब्ध इतना आता है, यानी 57/64, यानी 114/128, ऐसा किया उन्होंने। इतना कम करना है ना, इसको तीन गुनाहानियों में से कम कर देने पर जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग कम तीन गुनाहानियां होती है, उनका प्रमाण 11.7/64। इससे यव मध्य के गुणित करने पर संदृष्टि में सब द्रव्य 1422 होता है। यही बात नीचे भी बताई उन्होंने, इसको फिर कल पढ़ेंगे दोबारा पूरा ही दोबारा करेंगे, कल तो थोड़ा समझ में आना आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जावाणी के ज्ञान ते